और नमस्कार। यूरोपीय इतिहास के इस नए अध्याय में हम शुरू करने जा रहे हैं पेरिस की संधि, जिसका यूरोपीय इतिहास में अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इंग्लिश में इसे हम कहते हैं पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस। तो आइए शुरू करते हैं पेरिस की संधि। युद्ध की विभीषिका में संपूर्ण विश्व को चार वर्षों की अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। इसमें लाखों ने प्राणों की आहुति दी, लाखों लूले लंगड़े हो गए, परिवार टूट गए और असंख्य नगर ध्वस्त हो गए। चारों तरफ भयंकर पिपासा को देखकर मानव त्रस्त हो गया। वह अपने नेताओं में एक नई दुनिया की आकांक्षा रखता था। अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन के रूप में उन्हें एक शांति का मसीहा दिखाई दे रहा था। उसके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों में आशा की किरण दिख रही थी, लेकिन दूसरी ओर पश्चिमी यूरोप के कुछ देशों में क्षोभ भी था। इंग्लैंड और फ्रांस की जनता अब भी सारी जिम्मेदारी जर्मन और उसके मित्र राष्ट्रों पर थोप रही थी। युद्ध में हुए विनाश का उत्तरदायित्व तो जर्मनी के सिर मढ़कर वहां से एक एक पाई हर्जाने के रूप में वसूल करने की मांग की जा रही थी। जिस बदले की भावना ने प्रथम महायुद्ध को अनिवार्य बना दिया था, वह अभी मौजूद ही था। इस पृष्ठभूमि में सारी दुनिया के नेता पेरिस के रंगीले और तनावपूर्ण वातावरण में शांति की तलाश कर रहे थे। यह निश्चित था कि अभी भी अधिकांश लोग मृग मारीचिका के शिकार थे। विश्व युद्ध में सारी दुनिया के अधिकांश देश प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से शामिल थे। विश्व शांति के नियोजन में ही उन्हें हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। लेकिन जिस प्रकार युद्ध प्रमुख रूप से महाशक्तियों के बीच का ही संघर्ष था, उसी प्रकार शांति और समझौतों के निर्णयों में भी बड़े राष्ट्र की प्रमुखता बरकरार थी। शक्तिशाली देशों में महत्वपूर्ण समझे जाने वाला रूस भी क्रांति के बाद अलग कर दिया गया था। जर्मनी, ऑस्ट्रिया आदि पराजित राष्ट्र थे और इसलिए उन्हें वार्ता में शामिल नहीं होने दिया गया। शेष बचे थे अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली और जापान। इनमें भी अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज और फ्रांस के प्रधानमंत्री क्लमांसो ने सभी महत्वपूर्ण निर्णय किए थे। बुड्रो विल्सन को इतिहास का प्रवक्ता कहा जा चुका है। युद्ध काल में ही उसने शांति के 14 आधारों की घोषणा की थी। युद्ध रोकने और संधि वार्ता के लिए इन्हें ही आधार बनाया गया था। जर्मन नेता भी विल्सन पर विश्वास करते थे। वहां उसे तटस्थ नैतिकता और बुद्धिमत्ता का वाहक समझा जाता था। उसकी आदर्शवादिता से शांति प्रेमियों को बड़ी आशाएं थीं। विल्सन को यूरोप की राजनीति में कोई विशेष दिलचस्पी नहीं थी। वह सामान्यतः राष्ट्रवादी प्रकृति का पोषक था। इसका प्रमाण यह था कि वह एक शताब्दी पहले किए गए पोलैंड की पुनर्स्थापना को भी आवश्यक समझता था। वह जर्मनी से बदला लेने के पक्ष में भी नहीं था। वह पेरिस एक निश्चित इरादे से आया था और संधि वार्ता के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना को भी अंतिम रूप देने दिया जा सके, ताकि भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय झगड़े बीच बचाव और शांतिपूर्ण ढंग से सुलझ सकें तथा दुनिया में सद्भावना बढ़े। एक प्रकार से संधि वार्ता से अधिक वह राष्ट्रसंघ की स्थापना को महत्व देता था, लेकिन उसे यूरोपीय राजनेताओं की मनोवृत्ति का या तो पता नहीं था या उसे नियंत्रित कर लेने के बारे में पूर्णतः आश्वस्त था। उसका यह भ्रम शीघ्र टूट गया जब उसे राष्ट्रसंघ के विषय में सहमति प्राप्त करने के लिए बहुत से अवांछित समझौते करने पड़े। अमेरिकी आदर्शवादिता तो यूरोप के धूर्तता के आगे पराजित हो गई। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि वह अपने देश के बहुमत का प्रतिनिधित्व नहीं करता था। इसका प्रमाण तत्काल मिला जब अमेरिका ने राष्ट्रसंघ में शामिल होने से इनकार कर दिया। पेरिस में विल्सन को उतनी सफलता नहीं मिली जितनी कि उसने कल्पना की। तथापि यह मानना पड़ेगा कि पेरिस की संधियों में जो कुछ भी उदारता बरती गई, उस पर उसी का प्रभाव था। पेरिस आने पर यूरोप में उसे शांति का प्रणेता कहा गया और एक रोमन विजेता की भांति उसका स्वागत किया गया था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज के अनुसार सर्वोत्कृष्ट सम्मान आस्था और भक्ति समर्पित की गई थी, लेकिन लौटने पर न तो वह पूरी तरह संतुष्ट था और न ही प्रशंसित। उसने दो बातों पर सबसे अधिक जोर दिया, प्रजातंत्र और आत्मनिर्णय का सिद्धांत। दोनों में ही उसे पूरी सफलता नहीं मिली। लॉयड जॉर्ज। हमारा अगला हेडिंग है लॉयड जॉर्ज, रूसी क्रांति के विरुद्ध अभियान संगठित करने में अग्रणी, कुशल और उदार प्रधानमंत्री के रूप में लॉयड जॉर्ज प्रख्यात था, और युद्धकाल में उसने राष्ट्र का अभूतपूर्व योग्यता से नेतृत्व किया। इससे उसका सम्मान भी बढ़ा था। उसमें इंग्लैंड की परंपरागत व्यवहार कुशलता के साथ उदारता के पुष्ट भी था, लेकिन पेरिस आने से पहले जो चुनाव हुए उसे इंग्लैंड की जनता ने जैसे को तैसा का उदाहरण पेश किया और जर्मनी से क्षति की एक एक सीलिंग पूर्ति करने का आगाह किया था। पूरे देश में कैसर को फांसी दे दो के नारे गूंज रहे थे। इस तरह लॉयड जॉर्ज अपने राष्ट्रीय जनमत का ध्यान रखते हुए जर्मनी के विरुद्ध सख्त दृष्टिकोण अपनाने के लिए मजबूर हो गया था। साथ ही उसे यूरोप से भी अधिकांश महत्वपूर्ण इंग्लैंड के विस्तृत साम्राज्य का ख्याल था। वह यूरोप के बारे में समझौता कर सकता था, लेकिन साम्राज्य के विषय में कोई हस्तक्षेप स्वीकार नहीं कर सकता था। इंग्लैंड के व्यावसायिक हित के लिए जर्मनी का समृद्ध होना आवश्यक था, और यह इंग्लैंड की राजनीतिक हित में था, और जर्मनी संतुष्ट और शांतिप्रिय बने रहे। इसलिए जर्मन नौसेना का विनाश के अतिरिक्त वह जर्मन का और दमन नहीं चाहता था। साथ ही वह फ्रांस को भी अधिक शक्तिशाली नहीं देखना चाहता था। उसने बड़ी कुशलता से क्लमाओ की उग्र और विल्सन की आदर्शवादी नीति के बीच संतुलन रखते हुए इंग्लैंड के हितों को सामने रखा। इसलिए उस पर क्लमांसो जैसे कठोर होने का आरोप नहीं लगाया गया। उसने अपने देश को तनिक भी हानि नहीं होने दी। फीसर के अनुसार पेरिस में सबसे अधिक लाभ उसे ही हुआ। हमारा अगला शीर्षक है क्लमांसो। अपनी जुझारी नीतियों के कारण क्लमांसो राजनीतिक में शेर कहा जाता था। रिसलू, माजारेन, लुई चौदहवें तथा दांतों के साथ इतिहास में विचरण करने वाले क्लमांसो को केवल तीन चीज़ों से प्यार था, विज्ञान, फ्रांस और स्वतंत्रता। वह फ्रांस की सेना में पराजय और अलसास और लोरेन के जर्मनी साम्राज्य द्वारा हड़पे जाने के एक क्षण के लिए भूल नहीं पाया था। उसने देखा था कि जब भी जर्मन शक्ति बढ़ती है तो फ्रांस के लिए खतरा पैदा होता है। वह न केवल अलसास और लॉरेन वापस लेने के लिए कृतसंकल्प था, बल्कि उसने जर्मनी को इस तरह पंगु बनाने की योजना भी अपनाई थी जिससे जर्मनी पुनः सिर न उठा सके। अपने देश की असुरक्षा देखकर वह अतीत के लिए क्षतिपूर्ति और भविष्य के लिए सुरक्षा चाहता था। बिस्मार्क ने फ्रांस को केवल एकाकी और मित्रहीन बताया था। क्लमांसो जर्मनी को असहाय और शक्तिहीन बना देना चाहता था। उसकी योजनाओं को प्राथमिक सफलता को इस बात से मिल गई थी कि सम्मेलन पेरिस में बुलाया गया। पेरिस में एकत्र राजनेता वहां सुनियोजित ढंग से हो रहे प्रचार से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते थे। क्लमांसो ने कूटनीतिक और दृढ़ता के सहारे कितनी ही बातों पर विल्सन को झुकने के लिए मजबूर कर दिया था। उसे मालूम हो गया था कि विल्सन हर कीमत पर राष्ट्रसंघ की स्थापना चाहता है। इस बात को वह मानो ताश के खेल के तुरूप के पत्तों की तरह इस्तेमाल करता था। इस मार्ग में बाधा देने का इशारा करके विल्सन को अपने पक्ष में कर लेता था। फ्रांस की सुरक्षा और जर्मनी का दमन उसके लिए अभियान बन गए थे। पेरिस में उसे इस दशा में सफलता मिली, लेकिन समय ने सिद्ध कर दिया कि उसके जैसा आक्रांत और आक्रामक नेता अपने देश को दुर्गामी लाख नहीं दे सकता। इसलिए बड़े नेताओं के अतिरिक्त इटली के प्रधानमंत्री अरलांदो इस ख्याल से पेरिस आया कि वह अपूर्ण इटली की लालसाएं पूरी होंगी और उसका विस्तार होगा। उसने जर्मन गुट से अलग होकर मित्र राष्ट्रों की मदद की थी, इसलिए उसे अतिरिक्त पुरस्कार की भी आशा थी। लेकिन जब उसे न महत्व मिला और न ही उसकी मांगें मानी गई तो वह क्षुब्ध होकर लौट गया। इटली का कहना था कि फ्रांस को अलसास और लॉरेन तथा इंग्लैंड को जर्मनी के अधिकांश उपनिवेश मिल रहे हैं, परंतु हमें क्या मिल रहा है। जापान का प्रतिनिधि भी यूरोप के सामने एशिया में जापान की प्रभुसत्ता स्वीकार कराने आया हुआ था। उसे प्रशांत महासागर और पूर्वी एशिया में सर्वोच्चता प्राप्त करने की आशा थी, लेकिन जापान अभी यूरोप की कूटनीति और पेचीदगी से परिचित नहीं था। उसे शीघ्र ही निराश होना पड़ा। इसके अतिरिक्त पेरिस में यूरोप के हर देश के कूटनीतिज्ञ और नेता मौजूद थे। पोलैंड के राष्ट्रवादी आंदोलनों का नेता पिलसुदुकी मौजूद था। यहाँ तक कि एशिया और अफ्रीका के नेता वहाँ आमंत्रित थे। भारत जैसे उपनिवेश को भी आमंत्रित किया गया था। लेकिन दुनिया भर के लोगों की रंगारंग नुमाइश के सूत्रधार तीन ही थे, विल्सन, जॉर्ज और क्लमांसो। युद्ध रोकने के बाद संधियों का आधार विल्सन की निम्नलिखित 14 सिद्धांत थे, जो कि निम्न हैं। एक, गुप्त संधियों के स्थान पर खुली वार्ता पर आधारित संधियां जो सर्वज्ञात हों। दो, विभिन्न देशों की समुद्रिक सीमाओं से बाहर युद्ध और शांति काल में समुद्रों पर सभी देशों का समान अधिकार। तीन, आर्थिक व्यवधानों का अंत और विभिन्न राष्ट्रों के बीच व्यवसाय के लिए समान स्थितियों की स्थापना। चार, देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी देशों का निशस्त्रीकरण। पाँच, उपनिवेशों के भविष्य का वहाँ की जनता के हितों और जिसे देश के उपनिवेश हों वहाँ के हितों का ध्यान में रखते हुए निष्पक्ष निर्धारण। रूस की भूमि पर किए गए कब्जे का अंत ताकि हर देश को अपनी राष्ट्रीय नीति का पालन करने में स्वतंत्रता हो। बेल्जियम की सार्वभौमिकता की पुनर्स्थापना। आठ, फ्रांसीसी भूमि पर विदेशी सत्ता का अंत तथा अल्सास और लॉरेन की वापसी। नौ, राष्ट्रीयता के आधार पर इटली की सीमाओं का पुनर्गठन। दस, ऑस्ट्रिया हंगरी जर्मनी के लोगों का स्वतंत्र विकास। ग्यारह, रोमानिया सर्बिया मोंटेनेग्रा की स्वतंत्रता और सर्बिया की सीमाओं के एड्रियाटिक सागर तक विस्तार की गारंटी। 12, तुर्की की सार्वभौमिक सत्ता की स्थापना, तुर्क साम्राज्य की अन्य राष्ट्रीयताओं का विकास तथा दार्दानेल की जलडमरू के सभी देशों के जहाज मुक्त यात्रा की गारंटी। 13, पोलिस जाति जिस क्षेत्रों में रहती है उन पर स्वतंत्र पोलैंड की स्थापना तथा उसके लिए एक बंदरगाह, उसकी राजनीतिक, आर्थिक और क्षेत्रीय अछूतता की गारंटी। 14, राष्ट्रसंघ की स्थापना। ये सिद्धांत पूर्णतः स्पष्ट नहीं थे, सभी देशों को स्वीकार भी नहीं हो सकते थे। व्यवहारिक स्तर पर इनमें बहुत से परिवर्तन करने पड़े। लैंगसम के अनुसार इनमें से 5 क्रियान्वित किए गए, 4 को मित्र राष्ट्रों के पक्ष में बदला गया और शेष 5 को उपेक्षित कर दिया गया। लेकिन ये सूत्र संधि वार्ता के लिए आवश्यक आधार बन सकते थे और इनका उपयोग भी हुआ। संधि के लिए कुल 58 आयोगों का गठन हुआ जिन्हें विभिन्न विषयों पर छानबीन करके रिपोर्ट तैयार करनी थी। इसके अतिरिक्त अलग अलग नेताओं में औपचारिक वार्ता हुई और ज़्यादातर बातें व्यक्तिगत स्तर पर तय कर ली गईं। औपचारिक रूप से पेश कर उन्हें स्वीकृति भी ले ली गई। जर्मनी को शर्त पर विचार करने के लिए कुछ घंटे का समय दिया गया। जब उसे आनाकानी की तो लॉयड जॉर्ज ने धमकाया, हमें यह देखना है कि जिन लोगों ने युद्ध शुरू किया वे भविष्य में फिर इस लायक रह न जाएं। जर्मन लोग उसके समाचार पत्र और राजनीतिज्ञ कह रहे हैं कि वह उस पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। मैं कहता हूं आपको हस्ताक्षर करना चाहिए, आप यहां नहीं करते तो बर्लिन में करेंगे। जर्मन गुट के देशों से अलग अलग संधियां की गई जिसका उद्देश्य प्रायः एक था। कुल मिलाकर 5 संधियां हुई जिन्हें पेरिस और आसपास के राजप्रसादों के नाम से जाना जाता है। यहाँ इन पर हस्ताक्षर हुए। ये संधियां निम्न हैं। सैब्र की संधि। तुर्की से सैब्र की संधि हुई जिसके अनुसार तुर्की का साम्राज्य उससे ले लिया गया और अब तुर्की एशिया माइनर प्रायद्वीप तथा कस्तुतुनिया नगर तक सीमित रह गया। एक विशेष प्रावधान के द्वारा मैंडेट प्रणाली शुरू की गई और फिलिस्तीन, ट्रांसजॉर्डेनिया तथा मेसोपोटामिया इंग्लैंड को एवं सीरिया फ्रांस को उस समय तक के लिए सुपुर्द कर दिया गया जब तक कि ये स्वतंत्र होने के लायक ना हो जाएं। इनके शासन और प्रगति की रिपोर्ट राष्ट्रसंघ के मैंडेट कमीशन को देना अनिवार्य कर दिया गया। तुर्की में इसी बीच मुस्तफा कमाल पाशा के हाथ में सत्ता आ गई और नए तुर्की गणतंत्र ने इस संधि को मानने से इनकार कर दिया। अंत में 4 वर्षों बाद यूनान में हुए युद्ध के परिणाम स्वरूप लोसान में एक दूसरी संधि हुई जिसे तुर्की, यूनान और अन्य देशों ने भी मान लिया। इस संधि से तुर्की की प्रतिष्ठा एक हद तक पुनर्स्थापित हो गई और वह यूरोप से पहली संधि की तरफ पूरी तरह निष्कासित होने से बच गया। दूसरी संधि थी नई की संधि। बल्गारिया के साथ नई के महल में संधि हुई। बल्गारिया से दोब्रुजा प्रांत लेकर रोमानिया को दे दिया गया और एजियन सागर तट बल्गारिया से ले लिया गया। इस तरह अब उसके पास केवल काला सागर तट रह गया। उसकी सेना 20,000 तक सीमित कर दी गई। जर्मनी का साथ देने के कारण बाल्कन प्रायद्वीप के नवोदित देशों में सबसे अधिक क्षति बल्गारिया की ही हुई और वह इस क्षेत्र में सबसे महत्वहीन देश बन गया। तीसरी संधि थी त्रियानो की संधि। हंगरी को आस्ट्रिया से अलग गणतंत्र माना गया। उसकी सीमाएं संकुचित कर दी गईं। उसे रोमानिया को ट्रांसलवेनिया देना पड़ा। उत्तर में एक हिस्सा नए देश चेकोस्लोवाकिया को देना पड़ा। हंगरी की सेना 35,000 तक सीमित कर दी गई। हंगरी एक समुद्र तट विहीन देश बन गया। उसकी भावी उन्नति पर बहुत बुरा असर पड़ा। हंगरी ऑस्ट्रिया के प्रभुत्व के कारण जर्मन गुटों में था, इसलिए वहां राष्ट्रीयता का सिद्धांत पूरी तरह लागू नहीं हुआ। सीमा निर्धारण में बहुत से ऐसे क्षेत्र जहां हंगरी की मैगार जाति रहती थी अन्य देशों को दे दिए गए। मैगार जाति की गरिमा समाप्त हो गई। स्लोवाकिया, ट्रांसलवेनिया तथा क्रोशिया जिले जिन्हें मैगार जाति अपना समझती थी पास के गणतंत्रों में बांट दिए गए। हताश हंगरी के असंतोष की कोई सीमा नहीं रही। चौथी संधि थी सेंट जर्मेन की संधि। इसे एक बार और सुने, सेंट जर्मेन की संधि। ऑस्ट्रिया के साथ सेंट जर्मेन की संधि हुई। इस संधि से न केवल ऑस्ट्रियाई साम्राज्य की परंपरा समाप्त हुई अपितु उसे ऑस्ट्रिया को यूरोप के छोटे और गौण देशों की कोटी में ला बिठाया। ऑस्ट्रिया को हंगरी से अलग कर दिया गया। वह भी एक समुद्र तट विहीन देश हो गया। इसका निश्चित रूप से प्रावधान किया गया कि ऑस्ट्रिया और जर्मनी कभी भी नहीं मिल सकते जब तक कि राष्ट्र संघ इजाजत न दे। ऑस्ट्रिया को अपने बड़े भूभाग और जनसंख्या से हाथ धोना पड़ा। उसकी सेना की सीमा 30,000 निर्धारित कर दी गई। ऑस्ट्रिया न नौसेना रख सकता था और न ही वायुसेना। इस तरह शार्लमैन के पवित्र रोमन साम्राज्य का उत्तराधिकारी ऑस्ट्रिया, जो एक समय में यूरोप का सबसे बड़ा और सम्मानित साम्राज्य था, अब यूरोप के लघुतम गणतंत्रों में एक हो गया। सांस्कृतिक परंपराओं के नाते वियना की याद भले ही की जाती हो, ऑस्ट्रिया का राजनयिक महत्व हमेशा के लिए समाप्त हो गया। एक ही तूफान में राजवंश, सेना और साम्राज्य सब कुछ समाप्त हो गया और भविष्य के लिए कुछ आशा नहीं बची। अगली संधि थी वर्साई की संधि। पेरिस की संधियों में सबसे महत्वपूर्ण वर्साई की संधि थी, जो जर्मनी के साथ संपन्न हुई। इसका अध्ययन विस्तार से होना आवश्यक है। वर्साई के उसी शीशा कक्ष में जहां बिस्मार्क ने फ्रांस के सम्मान की उपेक्षा कर जर्मनी साम्राज्य की घोषणा की थी, जर्मनी से बदला लेने की प्रवृत्ति के कारण जर्मन प्रतिनिधिमंडल को पहले से तैयार किया गए एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए बुलाया गया। उन्हें एक बार भी मौका नहीं दिया गया कि वे अपना पक्ष प्रस्तुत करें। विजेताओं की सेना जर्मनी में थी और जर्मन प्रतिनिधियों को बता दिया गया कि उन्हें अस्वीकार का अर्थ जर्मनी का विनाश होगा। इस तरह हताश और असम्मानित जर्मन प्रतिनिधिमंडल जब हस्ताक्षर करने के लिए आ रहा था तो रास्ते में खड़ी भीड़ ने उनका मजाक उड़ाया। लाचार जर्मन प्रतिनिधिमंडल का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कांपते हाथों से रिक्त स्थान पर हस्ताक्षर कर दिए। जर्मन साम्राज्य के क्षेत्रीय पुनर्गठन ने यूरोप का नक्शा ही बदल दिया। इस संबंध में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए जो निम्न है। अल्सास और लॉरेन फ्रांस को वापस कर दिया गया। पश्चिम का एक छोटा भूभाग बेल्जियम को दे दिया गया। सारी घाटी खनिज पदार्थों से बहुत संपन्न थी, उसे 15 वर्षों के लिए फ्रांस को दे दिया गया। स्लेस्विग को बिस्मार्क ने डेनमार्क से छीना था। इसका उत्तरी भाग डेनमार्क को वापस कर दिया गया। जर्मन उपनिवेश समाप्त कर दिए गए और उन्हें मैंडेट प्रणाली के अंतर्गत विभिन्न देशों ने प्रबंध के लिए बांट दिया। इन्हीं उपनिवेशों में एक दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका था, जिन्हें दक्षिण अफ्रीका को दिया गया था। क्षेत्रीय व्यवस्था के अतिरिक्त जर्मन पर कुछ और प्रतिबंध लगाए गए जो निम्न हैं। जर्मन की सेना एक समय में यूरोप में सबसे बड़ी थी। उसके सैनिकों की संख्या 1 लाख तक सीमित कर दी गई। जर्मन नौसेना समाप्त कर दी गई। उसकी जिन पनडुब्बियों ने कुछ समय के लिए कहर ढा दिया था, उसे डुबो दिया गया। उसकी नौसेना गढ़ नष्ट कर दिए गए, विशेषकर हेलीगोलैंड। जर्मन को वायुसेना रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। क्षतिपूर्ति के लिए जर्मन को कितना धन देना चाहिए, इसका तत्काल निर्णय लेना कठिन था। फ्रांस और इंग्लैंड युद्ध का पूरा खर्च वसूलने का पक्ष ले रहे थे और इसका किसी भी देश को भुगतान कर पाना असंभव था। यदि संभव हो पाता तो निश्चित कर पाना कठिन था कि कुल खर्च कितना हुआ। इसके बाद में तय करने का निश्चय किया गया। विल्सन ने फ्रांस और इंग्लैंड की मांग का विरोध किया। बार बार वार्ता करने और कमीशनों का गठन होने और बाद खर्च और उसकी अदायगी का तरीका तय हो पाया। जर्मन को नष्ट क्षेत्रों की पुनर्स्थापना, विनिष्ट संपत्ति के खर्च और मित्र राष्ट्रों को दिए जाने वाले युद्ध पेंशन देने पड़े। इसके अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्रबंध भी ऐतिहासिक सिद्ध हुए। त्रिएस्त, स्त्रिया, त्रिनितो तथा दक्षिण टाइराल इटली को दे दिए गए। इटली की संपूर्णता का सपना काफी हद तक पूरा हो गया। फिर भी इटली पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुआ और विजित देशों में सबसे असंतुष्ट इटली ही था। स्वतंत्र पोलैंड की स्थापना हो गई। नवोदित पोलैंड के गणतंत्र में रूस द्वारा अधिकृत पोलैंड, गैलिसिया, पोजेन, पश्चिमी प्रसा और जनमत संग्रह के आधार पर उत्तरी साइलेसिया सम्मिलित थी। पोलैंड को समुद्र तट तक पहुंचने के लिए गलियारे का प्रावधान किया गया। इस गलियारे के अंत में स्थित डेजिंग का बंदरगाह राष्ट्रसंघ के प्रबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय नगर घोषित किया गया। एस्तोनिया, लातविया और लिथुआनिया नामक नए देशों का बाल्टिक सागर के पूर्वी तट पर उदय हुआ। फिनलैंड की स्वतंत्रता को मान्यता दे दी गई। बोहेमिया, मोराविया और हंगरी के उत्तरी क्षेत्रों को मिलाकर नए देश चेकोस्लोवाकिया का गठन हुआ। सर्बिया, मोंटेनेग्रा, बोस्निया, हर्जेगोविना, क्रोशिया तथा डालमेशिया के क्षेत्रों को मिलाकर एक बृहत्तर राज्य युगोस्लोवाकिया का गठन किया गया। रोमानिया का विस्तार किया गया। उसे हंगरी से ट्रांसलवेनिया, रूस से बेसारेबिया तथा बुकोविना और बल्गारिया से दोब्रुजा प्राप्त हुआ। पोलैंड, रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया, युगोस्लोवाकिया का कई राष्ट्रीयताओं के मेल से गठन हुआ। इन्होंने अपने देश में अल्पमत लोगों की सुरक्षा की गारंटी ली। विजेताओं ने पराजित देशों के साम्राज्य का बड़ी कुशलता से आपस में बंटवारा कर लिया। फ्रांस को तुर्की से सीरिया और जर्मनी से टोगोलैंड का अधिकतम भाग तथा कैमरून प्राप्त हुआ। इंग्लैंड को तुर्की से फिलिस्तीन, ट्रांसजॉर्डेनिया और मेसोपोटामिया तथा जर्मनी से टोगोलैंड और कैमरून का एक हिस्सा और अफ्रीका अफ्रीका तट पर टंगानिका प्राप्त हुआ, दक्षिण अफ्रीका को दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका प्राप्त हुआ। जर्मन न्यू गिनी ऑस्ट्रिया को दिया गया और सामोआ न्यूजीलैंड को। नाउरू द्वीप इंग्लैंड ऑस्ट्रिया और न्यूजीलैंड को संयुक्त रूप से दे दिया गया। कैरोलिन द्वीप समूह जापान को सौंपा गया। उपनिवेशों में केवल अरब को स्वतंत्रता मिली, परंतु बंटवारा यह मानकर किया गया कि ये क्षेत्र तत्काल स्वतंत्र होने की स्थिति में नहीं थे। उन्हें क्षेत्रफल, जनसंख्या और उन्नति के आधार पर तीन श्रेणियों में बांटा गया। प्रथम श्रेणी में मध्य युग में तुर्क के क्षेत्र थे, जिन्हें कुछ दिनों में ही स्वतंत्रता मिलनी थी, और तब तक के लिए वहाँ की व्यवस्था का भार इंग्लैंड और फ्रांस के हाथों में सौंप दिया गया। द्वितीय श्रेणी में अफ्रीका के बड़े उपनिवेश थे, जहाँ सभ्यता का स्तर बहुत निम्न था। अंतिम कोटि में ऐसे क्षेत्र थे जिनमें स्वतंत्र रहने का आर्थिक आधार नहीं था। अलग अलग देशों के प्रबंध पर निगरानी के लिए राष्ट्रसंघ के तत्वाधान में एक आयोग का गठन हुआ, जो दौरा कर सकता था, शिकायतें सुन सकता था और जिसके पास इन क्षेत्रों की प्रगति की वार्षिक रिपोर्ट आनी अनिवार्य थी। इन क्षेत्रों में कुछ अपवादों को छोड़कर प्रायः सभी स्वतंत्र हो चुके थे। सबसे विवादास्पद दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका बना हुआ था, जिसे सारे अनुबंधों का उल्लंघन कर दक्षिण अफ्रीका का अपना प्रांत कहता है। मूल्यांकन पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस का मूल्यांकन। वेरसाई की संधि अस्थायी होने की संभावना नहीं थी। जिस प्रवृत्ति और लक्ष्य से यह संधि हुई थी वह उसके विनाश का बीज स्वयं अपने में ही सजोए थी। फ्रांसीसी मार्शल फ्रास ने तो 1919 में ही संकेत दे दिया था कि यह संधि नहीं 20 वर्षों के लिए युद्ध का स्थगन है। वास्तव में ठीक 20 वर्षों बाद 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। यह कोई भविष्यवाणी नहीं थी, स्थितियों की समझ रखने वाले दूरदर्शी का विश्लेषण था। आखिर क्या कारण थे यह संधि इतनी अस्थायी सिद्ध हुई। किसी भी संधि के लिए परस्पर सद्भाव जरूरी है। द्वितीय महायुद्ध में विजयी ब्रिटेन के युद्ध संचालन प्रधानमंत्री चर्चिल का मत है कि देशों को पराजय में उद्धत और विजय के उदार होना चाहिए। द्वितीय महायुद्ध के बाद ऐसा ही हुआ और उसका परिणाम यह हुआ कि युद्ध के कुछ ही दिनों बाद अमेरिका ने जर्मनी की मदद की। कुछ ही वर्षों में विजेता और पराजित देशों ने मिलकर यूरोपीय साझा बाजार का गठन किया और सारी दुनिया में प्रगति के नए कीर्तिमान स्थापित किए। हिटलर के कारनामों से लज्जित होकर जर्मनी ने दुनिया की मदद के नाटक में हिस्सा बांटना शुरू किया। इसके विपरीत प्रथम महायुद्ध के बाद सारे जर्मनी को कटघरे में खड़ा कर दिया गया था। युद्ध शुरू किया था सम्राट बिलियन ने और उसका पतन हो गया। नवोदित वाइमार गणतंत्र की रक्षा करने और विलियम को सैन्य तंत्र का जिम्मेदार ठहराने के स्थान पर जर्मनी राष्ट्र को दोषी ठहराया गया। द्वितीय महायुद्ध के बाद जर्मनी राष्ट्र नहीं बल्कि नाजी व्यवस्था और हिटलर दोषी ठहराए गए। प्रथम महायुद्ध के बाद तो जर्मनी ही अपराधी था। वह एक संकुचित और गलत दृष्टिकोण था जिसके परिणाम भयावह हुए। संधि का आधार यदि वार्ता होती तो उसके क्रियान्वयन के प्रति दोनों ही पक्षों की जिम्मेदारी होती, लेकिन वेरसाई की संधि एक थोपी हुई एकतरफा संधि थी। इतिहासकार ईएच कार के अनुसार ऐसा लगता है कि किसी न्यायालय ने किसी अपराधी के विरुद्ध फैसला सुना दिया हो। कार वेरसाई की संधि को आरोपित संधि मानता है। उसके अनुसार युद्ध के बाद की गई हर संधि अर्थ में आरोपित होती है कि पराजित देश खुशी से उसकी शर्तें नहीं स्वीकारता, लेकिन इन संधि में शर्तें जिस तरह थोपी गई थी उसी तरह किसी से नहीं। ऐसी अपमानजनक संधि का उल्लंघन उसे नकारना जर्मनी जैसे स्वाभिमानी देश के राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया। लैंगनसम के अनुसार वेरसाई की संधि में जर्मनी को अपराध स्वीकार करने पर मजबूर किया गया था, लेकिन उसके लिए इसके विरुद्ध विद्रोह करना और उसे बदला लेना उन्होंने ऐसा किया था राष्ट्रीय सम्मान का सवाल बन गया था। 1919 के बाद पीढ़ी इसी परिकल्पना के आधार पर जीवित थी कि कब इस संधि का अंत होगा। इस संधि की अवज्ञा, उल्लंघन और अंत की बात करते ही टुटपुटिया हिटलर पूरे देश की स्वीकृति और लोकप्रिय तानाशाह बन गया। फ्रेडरिक विलियम, फ्रेडरिक और माल्टके का विख्यात देश केवल 1,00,000 की सेना से कैसे संतुष्ट होता। संपूर्ण यूरोप नौसेना का विस्तार करे और जर्मनी मात्र कुछ व्यावसायिक जहाजें लेकर संतुष्ट करे, यह कैसे संभव था। विश्व में वायुसेना का महत्व बढ़ता चला गया और जर्मनी केवल कल्पना की उड़ाने भरे। पेरिस में पराजित देशों के निशस्त्रीकरण की में इस बात पर भी विचार किया गया था कि सभी देश उसी अनुपात में अपना निशस्त्रीकरण करेंगे, लेकिन विजेताओं ने इस ओर ध्यान नहीं दिया और निशस्त्रीकरण सम्मेलनों का नाटक चलता रहा। इस तरह एक तरफा दबाव अनैतिक ही नहीं अव्यवहारिक भी था। इस संधि के उल्लंघन के लिए एक परोक्ष प्रोत्साहन भी था और यही हुआ भी। जर्मनी को युद्ध के लिए उत्तरदायी ठहराना हर तरह से गलत था। विलियम की जिम्मेदारी कुछ हद तक थी। आज तो अंग्रेज इतिहासकार भी मानते हैं कि एक पक्ष को जिम्मेदार ठहराना हर तरह से गलत और ऐतिहासिक तथ्यों के विपरीत है। इसलिए युद्ध की क्षति के लिए उस पर इतना भारी बोझ डालना गलत है और अदूरदर्शिता भी। चर्चिल जैसा साम्राज्यवादी भी इस संधि की आर्थिक शर्तों को पागलपन करार देता है। इतनी बड़ी रकम जर्मनी तभी दे सकता था जब उसका आर्थिक विकास हो, लेकिन उसके औद्योगिक विकास पर हर तरह से प्रतिबंध ला दिया गया, यहाँ तक कि उसे फ्रांस, इटली और बेल्जियम को खनिज पदार्थ तक देने पड़ते थे। ऐसी स्थिति में जर्मनी हर्जाना कहाँ से देता। लड़खड़ाते गणतंत्र पर आर्थिक बोझ बढ़ता ही गया और जर्मनी को अर्थतंत्र 10 वर्षों में पूरी तरह ध्वस्त हो गया। भीषण आर्थिक अराजकता की स्थिति में फासिज्म ने जन्म लिया। इसलिए वेरसाई में यह दृष्टिकोण सिद्ध हुआ कि जर्मनी को सैनिक नहीं आर्थिक रूप से पंगु कर दिया जाए। पेरिस की संधियों के विश्लेषण से उनके और भी कई दोष स्पष्ट हो जाते हैं। सबसे आपत्तिजनक यह था कि रूस का जर्मनी गुट की पराजय में बड़ा हाथ था, उसे शामिल नहीं किया गया। विजेताओं के पास एकमात्र तर्क था कि वहां क्रांति के बाद स्थिति स्पष्ट नहीं है। वस्तुतः कारण यह था कि रूस में ऐसी व्यवस्था स्थापित हो गई थी जो शक्तियों का विरोधी था जिन्होंने युद्ध किया था, शांति कायम करने चले थे, लेकिन रूस के सम्मिलित न होने से कोई व्यवस्था अस्थायी नहीं हो सकी। विशेषतः पूर्वी यूरोप में इससे यह संदेश दृढ़ होता था कि पेरिस में पूंजीवादी साम्राज्यवादी शक्तियां आपस में झगड़े निपटाने के लिए इकट्ठा हुई थीं और वे किसी विकल्प या उसकी संभावना के लिए तैयार नहीं थीं। विश्व में नई व्यवस्था की बात करते हुए सभी देश अपने विशेष हितों को सुरक्षित करने लगे थे। फ्रांस पहले तो राइन नदी की सीमा प्राप्त करने के लिए सचेष्ट था। फ्रांस की इस परंपरागत महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए लुई XIV ने नेपोलियन तृतीय तक तथा सभी राजा और क्रांतिकारी लड़ाए रहते आए थे और यह भी जब पूरी नहीं हुआ तो फ्रांस की सुरक्षा के प्रश्न पर यह कहकर अड़ गया कि फ्रांस की सीमाओं को सुरक्षित रखने की हर तरह की गारंटी होनी चाहिए। संधियों की कठोरता और सामान्य निशस्त्रीकरण की असफलता का सबसे बड़ा कारण यही था। इसी तरह इटली का एकमात्र उद्देश्य एड्रियाटिक तट पर स्थित दालमेसिया प्रदेश को प्राप्त करना था। इससे इटली और यूगोस्लोवाकिया के बीच कटुता बढ़ रही थी। अब तक लुप्त पोलैंड की महत्वाकांक्षा न केवल पुरानी सीमाएं प्राप्त करने की थी बल्कि वह पूरा साइलेसिया लेना चाहता था। इससे नवोदित पोलैंड के अपने पड़ोसियों के साथ संबंध कटु होने अनिवार्य थे। संधिकर्ताओं के पास अपने अलग अलग स्वार्थ थे। मित्र राष्ट्रों में भी मत वैभिन्न था। संधि के प्रमुख प्रणेता में भी मतैक्य नहीं था। इसलिए लैंगनसम के अनुसार संधि की असफलता का सबसे बड़ा कारण फ्रांस और इंग्लैंड के उद्देश्यों में भिन्नता थी। इसी तरह अमेरिका की उदारता से फ्रांस असंतुष्ट था। क्लमांसो व्यंग किया करता था, ईश्वर ने हजरत मूसा को 10 ही निर्देश दिए थे, लेकिन विल्सन ने तो 14 निर्देश किए। समलैंग के अनुसार विल्सन के आदर्शवाद और सम्मेलन के भौतिकवादी में तीव्र विरोध था। ज्यादातर भौतिकवादी को ही विजय मिली। इस तरह संधिवार्ता में विजेताओं के निशस्त्रीकरण की बात न चलाए जाने से बदनीति स्पष्ट होने लगी थी। एक तरफा निशस्त्रीकरण का कोई अर्थ नहीं था और वह अस्थायी नहीं हो सकता था। क्षतिपूर्ति के आधार पर गलत ढंग से तैयार किया जा रहा था। जब युद्ध स्थगित किया गया तो जर्मनी इस बात से आश्वस्त था कि उसके साथ अतिशयता नहीं होगी, लेकिन सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर थोपना पहले से युद्ध स्थगन की शर्तों के विरुद्ध था। संधि की 221वीं धारा के अनुसार जर्मनी और उसके मित्रों द्वारा मित्र राष्ट्रों और उसके सहयोगियों पर युद्ध थोपने के कारण उनकी सरकारों और नागरिकों को हुई सारी क्षति और हानि का उत्तरदायित्व जर्मनी को स्वीकार करना पड़ा। यह भी निश्चित था कि ऐसा अतिशयवादी दृष्टिकोण जितना जर्मनी के लिए घातक है उतनी विजेताओं के लिए भी। जब जर्मनी में आर्थिक ढांचा ध्वस्त हुआ तो फ्रांसीसी जगत पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। 1930 के आसपास जर्मनी के साथ साथ सारी दुनिया लड़खड़ाती रही। बेरोजगारी और मंदी ने एक साथ दोनों को ग्रास बनाया था। इस तरह विश्व के उपनिवेशों को आत्मनिर्णय का अधिकार देने की बात तो दूर, यूरोप में ही सबके साथ न्याय नहीं हुआ। तुर्क साम्राज्य से सभी दूसरी राष्ट्रीयताओं वाले लोग मुक्त कर दिए गए, लेकिन आर्मीनियन लोगों के भविष्य की ओर ध्यान नहीं दिया गया। इस तरह का भेदभाव स्पष्ट करता था कि सिद्धांतों के पीछे केवल राष्ट्रीय हित काम कर रहे थे। एक बात यह स्पष्ट है कि सिद्धांत और व्यवहार में कोई समन्वय नहीं था। इतिहासकार ईएच कार के अनुसार सिद्धांत और व्यवहार के में भेद इस बात को पुष्ट करता है कि वेरसाई संधि एक पक्षपातपूर्ण दस्तावेज है। इन संधियों पर अंतिम निर्णय लेने से पहले इनकी उपलब्धियों पर भी ध्यान देना जरूरी है। 1919 में जल्द से जल्द शांति स्थापना की आवश्यकता थी। अच्छी या बुरी संधि का प्रश्न तो गौण था। इसलिए लैंगसम के अनुसार आश्चर्य यह नहीं कि बुरी संधि हुई, आश्चर्य यह है कि कोई संधि तो हुई, कम से कम यूरोप में ही सही। संतरस्त लोगों की मुक्ति हुई और उन्हें स्वतंत्र राज्यों के रूप में उदय तो किया गया, फिर उन्हें उन राज्यों में मिल जाने को भी दिया गया जिससे उनकी संस्कृति अत्यंत निकटता रखती थी। एक साथ चेकोस्लोवाकिया, युगोस्लोवाकिया, पोलैंड, लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया की स्थापना पेरिस की सबसे बड़ी सफलता थी। पहले के राज्यों में सीमा के निर्धारण से यद्यपि अल्पमत की सारी समस्याएं समाप्त नहीं हुई, फिर भी अधिकांश समस्याओं का निराकरण हो गया। साम्राज्यवादी देशों ने भी यूरोप के लिए जनमत को निर्णय का आधार माना। कितने ही क्षेत्रों में अंतिम निर्णय लेने से पहले जनमत संग्रह किया गया, जैसे मेलमेदी बेल्जियम को देने से पहले वहाँ की जनता की इच्छा जान ली गई। दक्षिण पूर्व यूरोप में भी कई स्थानों पर ऐसा ही किया गया। सीमा निर्धारण में बहुमत की इच्छा के अनुसार ही निर्णय किया गया। कम से कम यूरोप के संदर्भ में यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। किसी भी निर्णय में कभी अल्पमत की समस्या सबके लिए संतोषजनक ढंग से नहीं हल की जा सकती। इसलिए सीमा फेरबदल के बाद भी बहुत से देश अल्पमत के लोगों इसलिए सीमा फेरबदल के बाद भी बहुत से देशों में अल्पमत के लोग आरक्षित रह गए। उनकी सुरक्षा के लिए संधि में ही प्रावधान कर दिया गया। यह दूसरी बात है कि उनका पूरी तरह पालन न होने से कटुता बढ़ी और स्थिति बहुत बेहतर नहीं हो सकी। लेकिन अल्पमत की सुरक्षा के लिए पेरिस में किए गए प्रयत्नों का इससे महत्व कम नहीं होता। यद्यपि पेरिस में भी लक्ष्य सीमित थे, अधिकांश निर्णय विजेताओं के हित को ध्यान में रखकर किए गए थे, फिर भी अन्य बातों को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं किया गया। वियना कांग्रेस की तरह यहाँ लूट के बंटवारे जैसा प्रश्न नहीं था। राष्ट्रहितों की बातें भी कुशलतापूर्वक की गई, न कि वियना जैसे स्थूल और भद्दे तरीके से। समय के साथ स्थितियाँ बदली थीं, इसलिए यहाँ नितांत प्रगति विरोधी रुख नहीं अपनाया जा सका। पेरिस की सबसे बड़ी उपलब्धि राष्ट्र संघ की स्थापना थी। यह सच है कि राष्ट्र संघ को बहुत अधिक सफलता नहीं मिली या वह द्वितीय युद्ध को नहीं रोक सका और लेलिन के अनुसार पूंजीवादी षड्यंत्रों का केंद्र बना रहा। फिर भी अंतर्राष्ट्रीय तनाव दूर करने में इस संस्था की स्थापना जिसने सारी दुनिया के कर्मचारी हों और जो राजनीतिक ही नहीं सामाजिक और आर्थिक मामलों में भी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्रोत्साहित करें, एक अभूतपूर्ण घटना थी। परस्पर विद्वेष के बावजूद विभिन्न देशों की स्थापना, विभिन्न देश इसकी स्थापना के लिए तैयार हो जाना इस बात का प्रमाण था कि दुनिया युद्ध से आक्रांत थी। राष्ट्रीय स्वार्थ के ऊपर उठना आसान नहीं था, फिर भी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की अनिवार्यता को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। राष्ट्रसंघ के उद्घाटन के समय फ्रांसीसी राष्ट्रपति पुएंकारे ने सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा था, आपके हाथ में विश्व का भविष्य है। और यह सच भी था। राष्ट्रसंघ के लोगों से बड़ी आशाएं थीं। उनकी उपयोगिता का इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा कि असहाय होने के बावजूद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राष्ट्रसंघ के भग्नावशेष पर ही संयुक्त राष्ट्रसंघ की स्थापना करनी पड़ी। इस प्रकार निर्विवाद रूप से इतनी बड़ी संस्था का निर्माण पेरिस की ऐतिहासिक उपलब्धि थी। साथ साथ यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि संधिकर्ता कौन थे, वे किन परिस्थितियों में संधि कर रहे थे। पेरिस में एकत्र अधिकांश लोग ऐसे थे जो प्रजातांत्रिक सरकारों के नेता थे और उनमें उनके सामने आगामी चुनाव का भय था। वे किसी भी आदर्श के लिए अपने पद को खतरे में डालने के लिए तैयार नहीं थे। युद्ध के तत्काल बाद विजेता देशों में भी खुशी के साथ साथ क्षोभ और आक्रोश भी था। कोई भी तर्क करने या विवेक से काम लेने की मनस्थिति में नहीं था। युद्ध के ज्वार से त्राण पाते ही जनता विजय के उन्माद से पीड़ित थी, केवल भावनात्मक स्तर पर सोच विचार कर रही थी। यही संधि यदि एक वर्ष बाद होती तो स्थिति कुछ और हो सकती थी, लेकिन जनमत की भावना और उसका राजनेताओं पर दबाव कार्यक्षेत्र को सीमित कर देता था। फ्रांस में जर्मनी का आतंक स्वाभाविक था। उसकी उत्तर पूर्व सीमा से हमेशा हमलावर जर्मनी सीधे पेरिस तक घुस आता था और फ्रांस की नींद हराम होती थी। 45 वर्षों में दो बार जर्मन सेना ने फ्रांस में प्रवेश कर उसे रौंदा था। उसकी पुनरावृत्ति से बचना ही फ्रांस की जनता और राजनेताओं के लिए सर्वाधिक महत्व की बात थी। इस प्रकार इंग्लैंड का साम्राज्य उसके अस्तित्व और महानता का आधार था। इस संबंध में कैसे कोई समझौता करता। साथ ही शासक और शासकों का चरित्र भी देखना चाहिए। अपने वर्ग के स्वभाव के अनुकूल ही वे कार्य और निर्णय करते। फीसर के अनुसार युद्ध में हर किसी को हर कहीं आंदोलित कर दिया था, हर क्षोभ को जगा दिया था, हर दावे को उभार दिया था, हर किसी की कल्पना जगा दी थी, हर किसी की भूख बढ़ा दी थी। भूख, दावों, कल्पना और क्षोभों के समय युद्ध ने क्लांत राजनेताओं ने, जो अपने देश की उग्र जनमत के प्रति उत्तरदायी थे और जिन्हें समाचार पत्रों के अंधाधुंध प्रचार का सामना करना पड़ रहा था, जहां तक हुआ समस्याओं का समाधान ढूंढा। ऐसे वातावरण में इंग्लैंड और फ्रांस में जर्मनी में पाई पाई वसूल करो, कैसर को फांसी दे दो और सिलिंग के लिए सिलिंग और टन के लिए टन जैसे नारे लग रहे थे, तो राजनेता कैसे उदार हो जाते। इन बातों पर ध्यान न दे तो पेरिस संधियों की आलोचना उतनी ही कठोर हो सकती है जितनी ये संधियाँ। जो भी हो, पेरिस में शांति स्थापित नहीं की जा सकी। यूरोप के पुनर्निर्माण का सही खाका नहीं बन सका। इस बार 1815 से अधिक ध्वस्त हुआ था। पुनर्रचना पहले से अधिक महत्वपूर्ण और जटिल थी, लेकिन उतनी सावधानी नहीं बरती गई। संधि के बाद कहा गया था कि युद्ध समाप्त करने वाला देश समाप्त हो गया। अब शांति को समाप्त करने वाली शांति शुरू हो रही थी। प्रथम युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों ने बार बार कहा, यह युद्ध इसलिए लड़ा जा रहा है कि दुनिया में युद्धों की परंपरा ही समाप्त कर दी जाए। वह युद्ध तो समाप्त हो गया, लेकिन उसके बाद जो शांति व्यवस्था लागू की गई उसमें भी शांति भंग होने के बीज थे। इस कथन की सच्चाई घटनाओं ने साबित कर दी। जब संधि तीन वर्षों बाद ही मुसोली और 13 वर्ष बाद हिटलर का प्रादुर्भाव हो गया। वेरसाई या पेरिस की संधियों को सही परिप्रेक्ष्य में देखने का सही तरीका है उसकी वियना में की गई व्यवस्था से तुलना करने के बाद द्वितीय महायुद्ध के बाद की स्थिति से उसकी तुलना करना। वियना कांग्रेस में प्रगति विरोध और स्वार्थपूर्ण हरकतों के बावजूद नेपोलियन और फ्रांस में अंतर रखा गया था। फ्रांस की प्रतिनिधि तालिरा निर्णायक रूप से कांग्रेस में शामिल था। फ्रांस 2 वर्षों के बाद ही विजेताओं के संघ में शामिल कर लिया गया। पेरिस की संधि ने परिवर्तनों को प्रोत्साहित किया। इसे पूरी तरह प्रतिक्रियावादी नहीं कहा जा सकता। वहां क्रांतियों का दमन कोई संगठित प्रचार भी नहीं किया गया, परंतु 20 वर्ष बाद अस्थायी शांति नहीं रह पाई क्योंकि यहां विलियम और जर्मनी में अंतर नहीं किया गया। द्वितीय महायुद्ध के बाद स्थिति को देखें तो लगेगा कि पेरिस के लोगों ने वियना से सबक नहीं लिया था, लेकिन 1945 में विजेता वेरसाई की गलती से सीख ले चुके थे। इस बार तत्काल कोई औपचारिक संधि नहीं हुई। नूरेमबर्ग में युद्ध के अपराधियों पर मुकदमा चलाया गया और केवल हिटलर के प्रमुख सहयोगियों को अपराधी माना गया। जर्मनी के नए गणतंत्र पर दबाव डालने के बजाय उसे सहायता दी गई और एक सम्मानजनक संबंध स्थापित हुए। मार्शल योजना के अंतर्गत यदि विजेता फ्रांस और इंग्लैंड को सहायता मिली तो जर्मनी को भी पश्चिमी देशों में आर्थिक सहयोग का एक ऐतिहासिक क्रम शुरू हुआ। एक दशक बाद ही पूरी तरह नष्ट हुए जर्मनी अपने पैरों पर उठ खड़ा हुआ। 2 दशक बाद तो वह यूरोप का सबसे औद्योगिक और दृढ़ देश बन गया। प्रथम महायुद्ध के बाद हिटलर का और द्वितीय महायुद्ध के बाद विली ब्रांड का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे शांति प्रयासों के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। यह स्पष्ट है कि स्थितियों से अलग कर घटनाओं को नहीं देखा जा सकता। 1815, 1919 और 1945 की स्थितियां सर्वथा भिन्न थी, फिर भी आंशिक असमानता से भी तुलना का आधार प्रस्तुत होता है। कहा जा सकता है कि वियना कांग्रेस पुरातन व्यवस्था के पोषकों की जीत थी। जैसे वियना कांग्रेस पुरातन व्यवस्था के पतन को बहुत दिनों तक नहीं टाल सकी, वैसे ही पेरिस संधियां भी साम्राज्यवाद के पतन को नहीं रोक सकी।